शांति। देही अभिमानी स्थिति, उसकी स्पष्टता, उसका स्पष्टीकरण करने के लिए आज हमारे सन्मुख हैं हमारी स्नेही आदरणीय उषा बहन। हम सभी इनका इस भट्टी में एक हाथ की ताली के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उषा बहन वास्तव में आज ब्रह्मा कुमारीज के जो मुख्य वक्ता हैं, उन मुख्य वक्ताओं में से एक हैं, और आपने अपने ही अथक प्रयास से ज्ञान की गहराई और योग के अनुभवों के द्वारा अनेक विषयों के ऊपर एक्सपर्टीज प्राप्त की है, जैसे सेल्फ मैनेजमेंट के विषय, लेटेस्ट आप देखिए महाभारत, गीता, उनका स्पष्टीकरण, और जहां तहां आपके कार्यक्रम इन विषयों पर चलते रहते हैं, और न केवल नॉन बीकेस के लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बखूबी लोगों के सामने प्रेजेंट करना, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे बीके में जब भी हम बाबा के सीजन में आते हैं या योग शिविर के ग्रुप्स लेकर आते हैं या खुद जब यहाँ जैसे भट्टी करने के लिए आते हैं, आपको कोई भी विषय दे दिया जाए उस विषय को बहुत अच्छी तरह से और बहुत सरल तरीके से भाई बहनों के सामने स्पष्ट करती हैं, ये आपकी विशेषता है। आपने बहुत छोटेपन में बाबा के ज्ञान को प्राप्त किया, आपको ये ज्ञान मिला अफ्रीका में, और तत्पश्चात मुंबई में आप आई हुई थी, और कोई उस लक्ष्य से नहीं आई थी कि जीवन समर्पित करना है, लेकिन उसी समय ही वहां आई तो वहीं पर ही अपना जीवन तुरंत समर्पित करने का निश्चय किया, और जहां तक मुझे मालूम है इन्होंने अपने पेरेंट्स को लिख दिया कि अभी मैं यहीं रहूंगी। और आपने मुंबई में साथ साथ हैदराबाद नागार्जुन सेंटर में सेवाएं दी, और काफी वर्षों तक वहां सेवाएं देने के पश्चात उस हद से निकल के आप बेहद में मधुबन में सेवा करने के लिए निमित्त बने, और तब से आप योग शिविर, डिफरेंट प्रोग्राम्स, और जो भी यहां पर भट्टियों के बाबा के सीजन के कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग कंपनियों में जाना, वहां जाकर कार्यक्रम करना, इसके साथ साथ देश विदेश में आप चक्कर लगाकर बाबा का नाम रोशन कर रही हैं, तो ऐसे बहन हमारे बीच में हैं, तो हमका बहुत बहुत हम उनका अभिनंदन भी करते हैं, और मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अभी आज के विषय को आप स्पष्ट भी करेंगी और अनुभव भी कराएंगी। आदरणीय उषा बहन,
ओम शांति। आज का सारा दिन आपका देही अभिमानी स्थिति में रहा या आत्माभिमानी स्थिति में रहा। बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो, कभी बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, दोनों एक ही हैं या अलग हैं? दोनों एक ही हैं या अलग हैं? अच्छा, जो कहते हैं अलग है तो देही अभिमानी का मतलब क्या और आत्म अभिमानी का मतलब क्या? कर्म करते हुए देह के भान में होते हैं, बाबा की याद में बैठे हैं तो आत्मा समझ कर बैठते हैं, और कर्म करते हैं तो देह भान में होते हैं, तो देही अभिमानी होते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? देही अभिमानी में भी तो हम देह को चलाने वाली आत्मा समझकर कर्म करते हैं, याद में कर्म करते हैं, और आत्म अभिमानी में क्या करते हैं? वो भी तो याद ही कर रहे हैं। देही अभिमानी और आत्म अभिमानी में अंतर क्या है? बहुत अच्छा प्रयास किया बहन ने कि जब कर्म करते हैं तुम देह भान से अलग नहीं होते हैं, देह भान में तो रहना ही पड़ता है तभी कर्म करेंगे, है ना? उस समय आत्म अभिमानी नहीं बन सकते, लेकिन उस समय मैं आत्मा इस देह को मालिक बन करके प्रयोग कर रही हूँ, ये कर्मेंद्रिय की अधिकारी बन करके प्रयोग कर रही हूँ, ये भाव जब आता है तो उसको कहते हैं कि देही अभिमानी। जहां देह में होते आत्मा मालिक बन करके कर्मेंद्रिय का प्रयोग करके कर्म करती है तो उस मालिकपन की स्थिति में रहती है। और आत्म अभिमानी का मतलब है कि जब हम योग में बैठते हैं तो ये कर्मेंद्रिय को भी समेट लेते हैं, और जब कर्मेंद्रिय को समेट लेते हैं तो ये कर्मेंद्रिय से डिटैच हो जाना, अलग हो जाना, और स्वयं को आत्मनिश्चय करना और आत्म स्थिति में स्थित होकर के बाबा को याद करते हैं। उस समय ये देह के भान में भी नहीं रहते हैं। कर्म करते समय तो भान रहता है कि भाई मैं अपना हाथ का प्रयोग करूं, अभी चलना है तो पैरों का प्रयोग करूं, कुछ सोचना है तो दिमाग का प्रयोग करूं, तो मालिक बन के प्रयोग करने वाले। अब जब हम कहते हैं कि योग में बैठते आत्म अभिमानी स्थिति में बैठना है, तो आत्म अभिमानी स्थिति माना क्या? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये रटना है क्या? अंदर माला जपनी है क्या? तो आत्म अभिमानी होकर के कैसे बैठेंगे? आज जैसे दुनिया में कोई अगर देह अभिमान में है, कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है? देह अभिमान में अगर है तो कैसे पता चलता है उसके चेहरे और चलन में क्या होता है? कोई देह अभिमानी है कैसे पता चलता है आपको कि ये व्यक्ति बड़ा देह अभिमानी है? उसके बोल से, बोल में क्या होता है? गुस्सा होता है, रोब होता है, है ना? है ना? अपने आप को कुछ समझने वाला बोल होता है। और क्या होता है चेहरे और चलन में? क्या होता है? रूडनेस होती है उसके व्यवहार में, रूडनेस होती है, मधुरता नहीं होती है। और क्या होता है? घमंड दिखता है उसके शब्दों में, वो प्रकट होता है, जैसे अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, दूसरे को तुच्छ समझता है। और देह से लगाव होगा उसका। अच्छा, और देह से लगाव होने से क्या उसकी एक्शन होगी? भाई कैसे पता चला उसका अपने देह से लगाव है? बहुत ध्यान रखता है देह का। हाँ भाई, बॉडी कॉन्शियस में कैसे पता चला? तो देखो, देह अभिमानी व्यक्ति जब होता है तो उसका कैसे पता चलता है कि उसके नैन चैन बोल कर्म व्यवहार संस्कार हर एक में संबंध हर एक बात में कोई न कोई विकार झलकते हैं। गुस्सा आएगा, ईर्ष्या आएगी, दूसरों को तुच्छ समझने का मधुरता नहीं है वाणी के अंदर, है ना? तो कोई न कोई विकृति जब झलकती है वो है देह अभिमान। तो देही अभिमानी में क्या होगा? देही अभिमानी में क्या होगा? विकार नहीं होगा तो क्या होगा? आत्मिक दृष्टि होगी और मधुरता होगी बोलचाल में और स्वभाव में शांति होगी और मीठी बोली होगी। कहने का भावार्थ जहां गुण प्रवाहित हो रहे हैं, गुणों की शक्ति जो है वो उसके हर कर्मेंद्रिय से प्रवाहित होती है। जैसे देह अभिमान के अंदर विकारों की प्रवाह देखने में आती है, है ना? तो देही अभिमानी में गुणों का प्रवाह बोल चाल कर्म व्यवहार संबंध सब में वो प्रवाहित होता है। जिसके लिए दुनिया में भी कोई अगर मधुर मृदुभाषी होता है, मधुर बोल बोलते हैं, तो दुनिया के अंदर भी लोग यही कहते हैं, ये तो जैसे देवता है, है ना? देवता है माना उसके अंदर से वो झलकता है, इसलिए उसको कहा ये तो जैसे देवता है। या कई लोग कहते हैं कि इसको तो जैसे सचमुच भगवान ने बैठ के बनाया है, तो वो देही अभिमानी स्थिति है कि जहां हमारे संबंध संपर्क में भी जो आते हैं, जैसे देह अभिमान वाले व्यक्ति के संबंध संपर्क में आने से भी डर महसूस होता है, कहीं ये चोट न पहुंचा दे, शब्दों से व्यवहार से चोट न पहुंचा दे, डर लगता है, उसके नजदीक जाना नहीं चाहते। लेकिन जो देही अभिमानी होंगे उसके संबंध संपर्क में या उसकी उपस्थिति में भी सुकून महसूस होता है, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन महसूस होती है, उसको कहते हैं देही अभिमानी। और ये स्थिति का आधार क्या कि नित्य जैसे गुण प्रवाहित हो, उसका आधार क्या? उसका आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। कैसे? कि जब हम देह की कर्मेंद्रिय को जब समेट लेते हैं और समेट करके जब बाबा की याद में बैठते हैं, तो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये चिंतन नहीं करना है खाली, लेकिन आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना है। जब आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाएंगे, उसके बाद जब उठेंगे तो वो स्वरूप में तो रहेगा ना, वो सातों गुण हमारे स्वरूप में तो रहेंगे, शांति प्रेम आनंद शक्ति ज्ञान ये सारा स्वरूप में होगा, तो देही अभिमानी बनना आसान है, क्योंकि यही सात गुणों से दूसरे सारे गुण कनेक्टेड है। जैसे जहां शांति है प्रेम है तो वहीं मधुरता भी है, अलौकिकता है, सभ्यता है, ये सब उसी के अंदर ही आता है। तो ये सात गुणों से ही बाकी सारे गुण कनेक्टेड है। तो जब वो हमारे स्वरूप द्वारा वो ऊर्जा प्रवाहित होती है हर कर्म में, तभी तो लोग कहने वाले कहते कि हाँ इसको तो जैसे भगवान ने बैठ के बनाया है, या ये तो जैसे देवता है, ये अल्लाह लोग है। लेकिन उसका मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार तीन बातें हैं। तीन बातें कौन सी? अंतर्मुखता, अलौकिकता और अव्यक्त स्थिति। ये तीन बेस है। जितना हम दिन भर में अंतर्मुखी स्थिति में रहेंगे, तो जैसे कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, बाह्य मुखी सदा दुखी। क्योंकि बाह्य मुखता में कई चीजें हमारे से व्यर्थ की भी निकल जाएंगी, फालतू बातें निकल जाएंगी, फिर बाद में अफसोस होता रहता, अरे नहीं बोलना चाहिए था हमको, नाहक मुख से निकल गया ये बात, है ना? तो बाह्य मुखता के अंदर काफी व्यर्थ निकल जाता है और ये व्यर्थ ही भारी करता है। और अंतर्मुखता में जितना हम लेते हैं, तो अंतर्मुखता में हमारे संकल्पों के ऊपर भी हमारा अटेंशन है, तो व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं। अंतर्मुखता का मतलब, अंतर्मुखता किसको कहते हैं? खाली शांति में रहना उसको अंतर्मुखता कहेंगे क्या? अंतर्मुखता किसको कहते हैं? और अंतर्मुख किसको कहते हैं? दादी गुलजार का क्लास मुझे एक बहुत अच्छा याद आता है कि अंतर्मुखता का मतलब है कि मुख के ऊपर ही सारी इंद्रियां हैं, आंखें भी है, कान भी है, नाक भी है, मुख भी है और मन जो सोचने की क्रिया करता है। तो मुख्य पांच इंद्रियां जो है ये मुख के ऊपर है। अंतर्मुखी बनना यानी ये पांचों ही इंद्रियां अंदर कर देना, अंतर्दृष्टि को डेवलप करना या ये दृष्टि को भी अलौकिक कर देना, आत्मिक दृष्टि जहां हमारी बन जाए उसको कहते हैं अंतर्मुखी। मन के अंदर व्यर्थ न चले, ये है अंतर्मुखी। जो बाह्य मुखता वाले होते हैं तो दुनिया के ख्यालात चलते हैं, व्यर्थ के बातें चलते हैं। तो अंतर्मुखी जब हम हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं खाली हम साइलेंस में बैठ गए लेकिन अंदर में दुनिया की बातें चल रही है, उसको अंतर्मुखता नहीं कहा जाता है। अंतर्मुखता माना अंदर में वो व्यर्थ संकल्प भी हमारा समाप्त हो जाए, शांत हो जाए। और जितना अंतर्मुखी बन करके हम बैठते हैं, ये दृष्टि को बाह्य दुनिया से हम बंद कर ले, अंदर की दृष्टि को खोले यानी आत्म दृष्टि को हम जागृत करें। तो कर्म में जब आना है तो हर एक को आत्मभाव से देखना, हर एक के प्रति जो सोचते हैं शुद्ध संकल्प से सोचना, मुख से जो वचन निकलते हैं वो भी ज्ञान युक्त रतन निकले, ये है अंतर्मुखी स्थिति। जो कर्म में होते हुए बोलचाल में आते हुए भी अंतर्मुखी सदा सुखी, कि मुख से कोई भी ऐसे व्यर्थ के बोल न निकले, तब कहेंगे हाँ ये अंतर्मुखी है। बाकी साइलेंस में बैठने के बाद भी अगर अंदर सारी दुनिया का चक्कर चल रहा हो तो उसको अंतर्मुखी तो नहीं कहेंगे, वो तो बाह्य मुखता ही है, मन तो बाहर की दुनिया में ही घूम रहा है। तो जहां मन और ये सारी इंद्रियां अंदर में आत्म उन्नति के लिए जब संकल्प चला रहे हैं, दृष्टि उनकी उस तरह की है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी बनना। अंतर्मुखता में फिर लौकिक पना न हो, न्यारे, मैं अलौकिक। जितना अलौकिक, अव्यक्त, व्यक्त है मन बाह्यता है, एक है व्यक्त व्यक्ति, एक है अव्यक्त। अव्यक्त माना व्यक्ति के भाव से ऊपर, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति के भाव से ऊपर व्यक्त भाव। क्योंकि जहां व्यक्ति को देखा तो व्यक्त भाव साधारण आने वाला है, स्वाभाविक रीति से आ जाएगा। तो व्यक्त भाव में आ गए तो अव्यक्त कैसे होंगे? तो इसलिए उसका मेन आधार ये तीन चीज कि अंतर्मुखी, अलौकिक और अव्यक्त, अव्यक्त भाव, जिसके लिए बाबा की कई बार साकार मुरली में हम सुनते हैं कि बच्चे तुम देवता बनने वाले हैं, तुम जोर जोर से हंस नहीं सकते, जोर जोर से जो हंसता है माना व्यक्त भाव में आकर के वो हंसी मजाक आदि चलता है, तो उस भाव से भी अपने आप को ऊपर उठा ले, उसको कहते अव्यक्त, अलौकिक। लौकिक बातें, लौकिक पना, लौकिक आकर्षण, उससे अपनी बुद्धि को ऊपर उठा लेना। जिसके लिए दादी जानकी हमेशा तीन बातें कहती है कि मन, बुद्धि और दिल शुद्ध हो, मन स्वच्छ हो, बुद्धि स्पष्ट हो और दिल साफ हो, है ना? दिल माना नियत, नियत साफ हो। तो जब मन स्वच्छ हो, उसमें कोई भी प्रकार का व्यर्थ का भाव न हो, इतना स्वच्छ निर्मल शुद्ध है मन, तो अंदर से एकदम हल्कापन आएगा। यही देही अभिमानी स्थिति हमें हल्का बनाएगा। बुद्धि स्पष्ट है, उसमें कंफ्यूजन न हो, बुद्धि के अंदर कोई प्रकार की मूंझ न हो, ये करे ऐसा करे वैसा नहीं, स्पष्ट। तीसरा, नेत्र एकदम स्पष्ट है, खुला है ना? तो बुद्धि स्पष्ट है, क्योंकि बाबा ने हर बच्चे को जन्मते ही ये दो वरदान दे दिए। कौन से दो वरदान दिए? दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु। जब दिव्य बुद्धि मिल गई तो बुद्धि हमारी स्पष्ट हो गई, ये करूं वो करूं ऐसे दुविधा वाली बुद्धि नहीं है हमारी। बाबा ने हर बात के लिए हमें जो ज्ञान दिया है तो ज्ञान युक्त बुद्धि है हमारी, दिव्य बुद्धि है, तो उसमें कभी भी दुविधा नहीं हो सकती, है ना? एकदम स्पष्ट क्या करना है क्या नहीं करना है। और दिल, नियत अंदर की साफ, उसमें कोई भी प्रकार की मिलावट न हो। अगर उसमें मिलावट है तो हल्का नहीं हो सकते, देही अभिमानी बनना मुश्किल है। मन के अंदर व्यर्थ संकल्प है, बुद्धि के अंदर दुविधा भरी पड़ी है और नियत हमारी मिलावट वाली है, तो वो देही अभिमानी कैसे बनेंगे? वो देही अभिमानी बन नहीं सकते। तो देही अभिमानी बनना माना ये प्रैक्टिकल स्वरूप में वो गुण की ऊर्जा जो है प्रवाहित होनी चाहिए। जितना ये गुणों की ऊर्जा हमारी प्रवाहित होगी उतना देही अभिमानी हम नेचुरल बन जाएंगे, और यही अब बाबा हमारा स्वरूप देखना चाहते हैं कि जब हम योग में बैठते तब तक तो ठीक है, आत्माभिमानी होकर के बैठते हैं, आत्मा के स्वरूप को इमर्ज भी करते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म में आए, सचमुच हम आत्माभिमानी स्थिति में बैठे हैं, उसका प्रमाण क्या? हम योग के समय आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे थे, उसका प्रमाण क्या? कि देही अभिमानी बन करके कर्म करेंगे, वो गुण अपने आप जैसे हमारी हर इंद्रिय से प्रवाहित होने लगेंगे, दृष्टि में वो निर्मलता, मधुरता, वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर सरलता, सहजता, ये अगर ना है तो उसको देही अभिमानी नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब हम योग में बैठे तभी भी आत्माभिमानी होकर के नहीं बैठे थे, बुद्धि बाह्य मुक्ता की दुनिया में थी, ये स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा अब बच्चों का वो स्वरूप देखना चाहते, देही अभिमानी स्थिति हमारे स्वरूप में आए, और दुनिया के लोग भी अब यही देखना चाहते हैं, घर परिवार के अंदर भी क्या देखना चाहते हैं। दुनिया वाले भले 10 झूठ बोलते रहेंगे, हर सेंटेंस के अंदर झूठ आएगा, लेकिन अगर आपके मुख से एक भी झूठ निकला तो क्या कहेंगे, यही सीखते हैं क्या वहां, कहेंगे कि नहीं परिवार वाले, मना वो कितना अटेंशन खिंचवाते हैं हमारा कि हमें कैसे रहना चाहिए। तो बाबा हम बच्चों का ये स्वरूप देखना चाहिए कि अब कोई भी आपके तरफ अंगुली उठा करके ये न कहे, यही सीखते हैं क्या वहां पर, यही सिखाया जाता है क्या, नहीं। अब वो भी अटेंशन खिंचवाते तो बाबा भी हमारा अटेंशन खिंचवाते, तो हमारा रोल कैसा हो गया। अभी हमारा रोल एक आदर्श का है, दुनिया भी हमें आदर्श के रूप में देखना चाहती है, और अभी तक भी अगर बाबा की मुरलियां इतनी सुनने के बाद भी अगर वो चीज हमारे अंदर नहीं आए तो देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो बाकी आगे की स्थिति, क्योंकि देही अभिमानी पर ही तो सारा टिकाव है, आत्मअभिमानी स्थिति बेस है। अगर अभी तक भी आत्मअभिमानी नहीं बने तो फरिश्ता कैसे बनेंगे, क्योंकि फरिश्ता का भी प्लेटफॉर्म कौन सा है, आत्मअभिमानी स्थिति प्लेटफॉर्म है। जैसे रनवे होता है ना उड़ान भरने के लिए, तो रनवे कौन सा है हमारा, फरिश्ता स्थिति में उड़ान भरनी है अगर मुझे तो उसका रनवे तो आत्मअभिमानी स्थिति, और आत्मअभिमानी के लिए सारा दिन अगर देही अभिमानी बन करके कर्म किया हो तब बैठते ही आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे और तब जाकर के फरिश्तापन की उड़ान आगे भर सकेंगे। फरिश्ते का मतलब ये थोड़ी है कि बस मैं फरिश्ता हूँ, लाइट की काया वाली हूँ, मैं प्रकाशमय काया वाली फरिश्ता हूँ, यही खाली सोचना फरिश्तापन नहीं है कि मैं बाबा से बस लाइट के स्वरूप में संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप में मिलन मना रही हूँ, ये सोचना अव्यक्त स्थिति का अनुभव नहीं है। अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना है, उस फीलिंग में चले जाना है, और जितनी हमारी आत्मअभिमानी स्थिति पावरफुल होगी वही हमें हल्का कर देंगी, नहीं तो भारी ही रहेंगे, तो उड़ने का तो चांस ही नहीं है। अगर भारी होंगे तो उड़ेंगे कैसे, तो उड़ने के लिए तो हम जितना आत्मअभिमानी स्थिति में स्थित हो जाएंगे, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप हो जाएंगे, तो वही तो हमें उड़ाएंगे, है ना। और उसके लिए देही अभिमानी होंगे, अगर कर्म करते हुए हम लाइट रह करके कर्म किए हैं तभी तो हम फरिश्ता स्वरूप में भी बैठते ही उड़ान भरेंगे, ऊपर जाएंगे एकदम सहजता से, अव्यक्त बाबा से मिलन मनाना स्वाभाविक है। आत्म अभिमानी होंगे तो ही निराकारी स्वरूप में भी जा सकेंगे, परमधाम अगर जाना है, निराकारी बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना है तो भी आत्म अभिमानी चाहिए। अगर आत्म अभिमानी नहीं है तो निराकारी स्थिति कहां से आएगी, समझने की बात है, स्पष्ट है, तभी बीज रूप स्थिति का अनुभव होगा। परमधाम में भी आत्मा अपने अनादि स्वरूप में, वो बीज स्वरूप में कैसे स्थित होंगे, भरपूर सातों गुणों से एकदम भरपूर, यही तो बीज रूप अवस्था है। और जब बीज रूप में बैठेंगे तभी तो ज्वाला प्रकट होगी, और ज्वाला प्रकट होगी तो अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होंगे। अगर वो ज्वाला ही नहीं प्रकटी तो साधारण योग से कोई विकर्म विनाश नहीं होते। जब साधारण योग की स्थिति में हम बैठते हैं तो हाँ इतनी देर में हमने विकर्म किए नहीं, लेकिन जो विकर्म का खाता है उसको भस्म भी तो नहीं किया, क्योंकि उसको भस्म तो एक ही स्थिति में हो सकता है। फरिश्ते स्वरूप में भी विकर्म भस्म नहीं होते हैं, विकर्म भस्म होते ही है बीज स्वरूप में, निराकारी स्थिति में, परम धाम में। जब हम अपने आप को निराकारी स्थिति में स्थित करते हैं, उस बीज स्वरूप स्थिति में स्थित करते हैं, तब जाकर के वो ज्वाला प्रगटती है और विकर्म विनाश होते हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्म, भले वो थोड़ी घड़ी के लिए होगा, सेकंड, दो सेकंड, पांच सेकंड का भी क्यों नहीं वो स्थिति में आप टिक सके, लेकिन वो स्थिति में जैसे ही आप बैठेंगे, खुद भी महसूस कर सकेंगे कि जैसे ज्वाला अंदर से प्रकट होकर के विकर्मों को जला रही है, ऐसी पावरफुल एकदम स्थिति का अनुभव तभी तो करेंगे। ज्वाला देवी के मंदिर में गए हैं ना कि नहीं गए? गए हैं कभी? कितने लोग गए हैं? ज्वाला देवी के मंदिर में वहां एक कुंड है, देखा होगा, जिसमें पानी एकदम खोलता है, खोलता हुआ पानी नजर आता है, लेकिन हाथ डालो तो एकदम ठंडा होता है, ऐसे खोल रहा है। पता नहीं कुदरत के क्या उसमें करिश्माए है जो ऐसे लगता है पानी खोल रहा है, लेकिन हाथ डालो तो एकदम ठंडा शीतल। तो इसी तरह हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति में इतना शीतल हो अंदर से, मन इतना शांत और शीतल होगा, एकदम एकाग्र स्थिति होगी, तब वो ज्वाला प्रगटेगी। उसी का नाम है ज्वाला स्वरूप, वही हमारा यादगार है कि जहां अंदर से जैसे विकर्म दग्ध हो रहे हैं, लेकिन अंदर आत्मा एकदम शांत और शीतल है, कोई संकल्प नहीं, कोई इधर उधर का, वो स्वरूप में ही जैसे हम समाये हुए हैं, तभी अनुभव कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा कि सारी जितनी भी स्थितियां बाबा ने बताई है, चाहे वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हो, चाहे वो निराकारी स्वरूप हो, बीज रूप स्थिति हो, ये सारी स्थितियों का आधार कर्मातीत स्थिति हो, जितना देही अभिमानी बनेंगे तो कर्मातीत बन सकेंगे। ये दो स्थिति से ही सारी स्थितियां जुड़ी हुई है। देही अभिमानी होंगे तो कर्म करते वो कर्म हमें बांधेगा नहीं, कर्म बंधन से अतीत रह सकेंगे और वही कर्मातीत स्थिति तक हमें पहुंचाएगी। इसलिए देही अभिमानी स्थिति बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तक ये दो स्थिति के ऊपर ही हमारा अटेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे? ये दो स्थिति में ही अभी तक हमें टिकना मुश्किल हो रहा है, तो आगे की स्थिति कब होगी? अब जो बाबा हमसे देखना चाहते हैं, हमारे स्वरूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि अब बाबा कहे प्रत्यक्षता का पर्दा उठाने का समय आ गया है, और प्रत्यक्षता का पर्दा अगर बाबा को उठाना है और अभी तक हम तैयार ही नहीं हुए हैं, तो कब तैयार होंगे? और समय तो निकलता जाता है। तो ये तो कितना अच्छा सौभाग्य है आप लोगों को, ये मधुबन में बट्टी करने का चांस मिला है ना? मधुबन को हमेशा बाबा कहते हैं किला है, ये किला है, और जिस किले के अंदर सेफ, अब जितना दिन बट्टी में है ये तो महसूस करते कि यहां तो व्यर्थ संकल्प नहीं चल रहे ना, यहां तो आत्मस्थिति में स्थित होते हैं या नहीं होते हैं, सहजता का अनुभव करते हैं, और उसमें भी अमृत वेले विशेष कितनी बाबा की मदद का अनुभव होता है कि उस स्थिति में जैसे खो जाते हैं, बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, अपनी बैटरी को जैसे फुल चार्ज कर रहे हैं, सातों गुणों से भरपूर कर रहे हैं, है ना? अब यहां जो स्थिति है, ये बैटरी जो चार्ज हुई है उसको वहां भी चार्ज ही रखना,
ये नहीं कि वहां डिस्चार्ज हो जाए, है ना। तो चार्ज ही रहनी चाहिए हमारी बैटरी। तो उसके लिए जो कहा कि आज अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का आधार भी आत्म अभिमानी स्थिति और देही अभिमानी स्थिति है। फरिश्ते माना हल्का, बाबा कहते ना उसका धरनी पर पाव नहीं है। तो कौन सी धरनी? यही देह अभिमान की धरनी। तो देह अभिमान की धरनी पर जिसका पाव न हो वही तो अव्यक्त फरिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहा कि उसका कनेक्शन उसी स्थिति के साथ है। अगर वो स्थिति नहीं तो वो स्थिति भी नहीं है। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का मतलब ये नहीं कि मैं खाली अंदर में सोचती रहूं कि मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता बन करके बाबा के सामने जा रही हूं, मैं फरिश्ता बन करके बाबा को भी फरिश्ते रूप में देख रही हूं, ये नहीं है ना। लेकिन इतना नेचुरल हमारा उड़ान हो और इतना स्मूथ जैसे ये यात्रा हो मन और बुद्धि की, कि जैसे ही हम ये देह भान से एकदम डिटैच हो जाते हैं, आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं, तो जैसे हर एक का एक सूक्ष्म अंतवाहक शरीर है, इस शरीर के अंदर एक अंतवाहक शरीर लाइट का शरीर है, कि जैसे दुनिया में कोई शरीर छोड़ता है तो भी उस अंतवाहक शरीर से बाहर निकल जाती है आत्मा, तो हम सभी का भी अंतवाहक शरीर है और उसी अंतवाहक शरीर के द्वारा ही हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं। और जब सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो वहां हमारा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का चोला है लाइट का। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ये बात जब समझी तभी तो पुरुषार्थ उस अनुसार आरंभ किया कि ब्रह्मा बाबा के सामने भी सूक्ष्म वतन की बातें जब इतनी स्पष्ट नहीं थी तो बाबा ने विशेष एक बच्ची को बुला करके, 12 साल की बच्ची को बाबा ने मधुबन में बुलाया था और बाबा ने अपने कमरे में कहा बच्ची वतन में जाओ, और बाबा ने उसको वतन में भेजा, कहा वहां जो देखोगी आकर के सुनाओ मुझे। और फिर जब उसने आकर के बाबा को सुनाया कि बाबा ऊपर जो बाबा है ना वो तो बहुत लाइट वाला है, है आपके जैसा ही, फीचर्स आपके जैसे ही है लेकिन उसमें से तो बहुत लाइट निकल रही थी, है ना, और वो लाइट अभी तक आप में नहीं दिखाई दे रही है। बच्ची थी तो बाबा को एकदम स्पष्ट बता दिया उसने। बड़ी दीदी जी ने मना किया, क्या बोल रही है तुम, ऐसे बाबा के सामने थोड़ी बोलते हैं। बाबा ने कहा नहीं उसको बोलने दो, मैं समझना चाहता हूं कि ऊपर जो है वो मेरा स्वरूप कौन सा है। तब फिर मुरली में अव्यक्त बाप दादा ने ये स्पष्ट किया, पीयू की मुरली उस समय चलती थी, तो उस समय पीयू की मुरली में वो ऑलमाइटी बाबा ने ये स्पष्ट किया कि ऊपर जो है तेरा ही संपूर्ण स्वरूप है और ये जो स्वरूप है पुरुषार्थी है और ये स्वरूप को उस स्वरूप में मर्ज हो जाना है। तो ये स्वरूप वो स्वरूप में जब मर्ज हो जाएगा तभी तो संपूर्ण बन जाएंगे, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप तभी तो बनेंगे। गुलजार दादी ने ये बात बहुत अच्छी तरह से हम सबके सामने स्पष्ट किया कि इसी प्रकार हम सबका भी संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप वतन में है और ये पुरुषार्थी स्वरूप उस स्वरूप में जाकर के मर्ज होना चाहिए। तो जब ये स्वरूप उस स्वरूप में मर्ज हो जाएगा तब हम बाबा के साथ का अनुभव करते हुए हाँ सैर करेंगे, जैसे भ्रमण करेंगे। तो वो स्वरूप में मर्ज होने के लिए हमें अपने संपूर्ण सातों गुणों के संस्कार को इमर्ज करने होंगे। तो जितना योग में हम ये सातों गुणों को इमर्ज रूप में लाते हैं, अपने स्वरूप में इमर्ज करते, तो धीरे धीरे ये स्वरूप उस स्वरूप में जाकर के समा जाता है। तो जब फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना है तो सहज ही उस चोले को हम धारण कर लेते हैं। वो संपूर्णता की ड्रेस जो है उस चोले को, जैसे ये चोला है हड्डी मांस का प्रकृति का, तो वो चोला है लाइट का चोला, तो उस लाइट के चोले को हम धारण करके अव्यक्त बाप दादा के सामने जाकर के बाबा से नैन मुलाकात करते हुए, है ना, जब संदेशिया वतन में जाती है तो कैसे जाती है, उसी स्वरूप में समा जाती है जैसे, और उस संपूर्ण स्वरूप में बाबा के सामने, तभी तो बाबा के हर संकल्प को कैच कर सकती है। ये स्वरूप नहीं कैच कर सकता है, उसमें मिक्सचरिटी हो जाती है। लेकिन जब उस चोले को हम धारण करते हैं तो बाबा के हर संकल्प को कैच करना आसान हो जाता है कि बाबा मुझे क्या कहना चाहता है, बाबा मुझसे क्या कह रहे हैं, बाबा मुझसे क्या चाह रहा है, मैं और मेरा बाबा बस, फिर तीसरा कोई नहीं। और उस समय जैसे कई बार गुलजार दादी अपने संदेश में सुनाती है कि जब बाबा के सामने जाती है, कभी कभी ब्राह्मणों की सभा बाबा दिखाते हैं, तो वो ब्राह्मणों की सभा कौन सी होती है, हम सभी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो स्वरूप में वो ब्राह्मणों की सभा को इमर्ज करते हैं। और फिर जैसे दादी कहती है कि बाबा सबको एक हॉल में ले गया, कभी कोई पहाड़ी पर ले गया, कभी कोई कौन सी जगह पर ले गया, और वहां सारे इतने सारे आसन बने हुए थे, है ना, और वो थे लाइट के आसन, कमल आसन, कहीं कमल देखती है, कभी कभी हंस देखती है, कभी क्या आसन देखती है, बाबा कौन सा आसन, अलग अलग आसन दिखाते हैं। और जैसे ही वो कमल आसन को देखा, मान लो, या हंस आसन को देखा, तो वो भी ऐसे लाइट का आसन होता है, और उस समय उसमें से सप्तरंगी लाइट निकलती है, और वो सप्तरंगी लाइट कौन सी है, ये हमारी आत्मस्थिति की सप्तरंगी लाइट है। जो आत्माभिमानी स्थिति में बैठते हैं वो सप्तरंगी लाइट निकलती है। कहने का भावार्थ के उस फरिश्ता स्वरूप में भी आत्माभिमानी स्थिति का आसन, वो आसन बहुत जरूरी है, जिसमें से सप्तरंगी लाइटें हमारे स्वरूप से जैसे चारों ओर आभा मंडल की तरह जैसे फैल रही है और एक ऐसा प्रभा मंडल बन जाता है, और बाबा के सामने बैठकर बाबा से जैसे सकाश ले रहे हैं, इतनी शक्तिशाली किरणें ले रहे हैं, तो ये फरिश्ता स्वरूप है। और वहां से जब आगे निराकारी दुनिया में जाते हैं तो परम धाम के अंदर भी आत्मा बीज रूप में माना भरपूर स्थिति में है, एकदम संपूर्ण स्वरूप में आत्मा है, उस स्वरूप में अपने आप को इमर्ज करो। और उस समय बाबा से जब पावरफुल सकाश लेते हैं, शिव बाबा से डायरेक्ट आत्मा, तब वो विकर्म दग्ध होने लगते हैं, तब वो एकदम ज्वाला पकड़ लेती है, जैसे चिंगारी, बाबा की एक किरणें आई और बस आत्मा उस ज्वाला स्वरूप में आ जाती है, और अंदर से आत्मा एकदम शीतल शांत है ना, तब वो बीज स्वरूप, और तब हम कर्मातीत भी बनते हैं। तो सारे जो भी स्थितियां बाबा ने बताई है उन सब का आधार तो क्या है, यही है ना। तो अभी हम सभी योग में बैठेंगे, है ना, सारे दिन में आप लोग देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास तो किया ही है, फिर भी जैसे जैसे हम आपको संकल्प देते जाएंगे और उन संकल्पों के आधार से हम उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। सर्व कर्मेंद्रियां अधीन है, मैं आत्मा मालिक हूं। शरीर से और शरीर के भान से धीरे धीरे न्यारी होती जा रही हूं और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार पर अधिकार प्राप्त कर अपने सतोगुणी स्वरूप में स्थित होती हूं। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र स्वरूप पवित्रता का प्रकाश मेरे चारों ओर एक आभा मंडल की तरह फैला हुआ है। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा स्वधर्म शांति है। चारों ओर शांति के प्रकंपन को महसूस कर रही हूं। मन की गति शांत होती जा रही है। मैं आत्मा शीतल स्वरूप में हूं। कितना सुंदर एहसास है शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। जो सुख अति इंद्रिय सुख है इसी शांति में परम आनंद समाया हुआ है। मैं आत्मा सत्चित आनंद स्वरूप मैं आत्मा सतोगुणी स्वरूप हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं अपने वतन की ओर। मैं आत्मा अपने अंतवाहक शरीर द्वारा इस पंच तत्व की दुनिया से दूर सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूं। ये दिव्य स्वरूप भी कितना सुंदर है, दिव्य है। धीरे धीरे सूक्ष्म वतन में जहां मैं स्वयं को एकदम हल्कापन में महसूस करती हूं, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, मैं स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं। इस सूक्ष्म वतन में मेरा संपूर्ण अव्यक्ति फरिश्ता ड्रेस है। जिस ड्रेस को मुझे धारण करना है, ये संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप का चोला कितना सुंदर और हल्का है, एकदम हल्केपन का अनुभव होता है। जैसे पहनते ही मैं उड़ने का अनुभव करती हूं, और धीरे धीरे मैं स्वयं को अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख देख रही हूं। बाप दादा से नैन मुलाकात करती हूं, बाबा के नैनों से असीम प्यार अनुभव करती हूं और समा जाती हूं, हो जाती हूं परमात्म प्यार में। दादा के साथ कितना मधुर मिलन का अनुभव किया। बाबा के मस्तक से पावरफुल लाइट की किरणें मैं स्वयं में महसूस कर रही हूं। बाबा का वरदानी हाथ मैं अपने सिर पर अनुभव करती हूं। कितने वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से मैं अनुभव कर रही हूं। बाबा के संग एक बहुत सुंदर बगीचे में जाते हैं। जहां बहुत सारे आसन है, कमल आसन, और उस कमलासन से सप्तरंगी लाइट्स चारों ओर निकल रही है। मैं उस आसन पर स्थित हो जाती हूं। कितना सुंदर और दिव्य प्रभा मंडल है। सप्तरंगी लाइट्स के और बाप दादा हमारे सामने बड़े कामल आसन पर विराजित होते हैं। कितना दिव्य अनुभव है ये। बाप दादा के सानिध्य में धीरे धीरे इस संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते चोले को भी यहां छोड़ करके अपनी निराकारी दुनिया में जा रही हूं। मैं आत्मा अपने सतोगुणी स्वरूप में स्थित इस निराकारी दुनिया में कोई आवाज नहीं, मैं और मेरा बाबा मैं सतोगुणी स्वरूप हूं। मेरे बाबा सर्व गुणों में अनंत है, सर्व शक्तिमान है। कुछ क्षण के लिए इस निराकारी दुनिया में निरसंकल्प स्थिति में निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति में
चल
इस निराकारी मिलन में मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में बीज स्वरूप में स्थित हूं। सातों गुणों से भरपूर सर्व खजानों से भरपूर सर्व वरदानों से भरपूर ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर बीज स्वरूप और मेरे बाबा भी बीज स्वरूप है। बाबा से पावरफुल सकाश लाइट की किरणें मैं स्वयं में महसूस कर रही हूं। और यही लाइट की किरणें एक ज्वाला को प्रज्वलित करती है। जिसमें मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध हो रहे हैं। और मैं आत्मा शुद्ध और पवित्र होती जा रही हूं। बेदाग हीरे की तरह चमक रही हूं। चमकती हुई मणि के रूप में हूं। एकदम हल्कापन महसूस कर रही है। अनेक जन्मों के व्यर्थ का बोझ भस्म हो रहा है। और मुझ आत्मा का स्वरूप एकदम निर्मल पवित्र है। शुद्ध और स्वच्छ बाबा की अनंत किरणों की बाहों में मैं समा जाती हूं। अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हूं।
Yeah।
धीरे धीरे अब मैं आत्मा स्वयं को भरपूर महसूस करते हुए वापस अपने सूक्ष्म वतन में संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते का चोला धारण कर इस नमः शाम के समय बाप दादा के संग सैर पर निकलते अनेक भक्त आत्माएं पुकार रही है बाबा के संग उन भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विभिन्न मंदिरों का, वातावरण, जहां भक्त सच्ची आस्था के साथ परमात्मा का आवाहन करते हैं, उनके निस्वार्थ मनोकामनाओं को बाप दादा के द्वारा पूर्ण करने के लिए शक्तिशाली किरणें आशीर्वाद के रूप में बरसाते हैं। जितना जितना शुभ भावना का दान करते जाते हैं, बड़ा सुकून का अनुभव करती हूं। अब धीरे धीरे अपने उस अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप को भी छोड़ते हुए अपने अंतवाहक शरीर द्वारा पुनः इस प्राकृतिक देह में प्रवेश करती हूं। मैं आत्मा सर्व कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में लेती हूं। आत्मभाव में स्थित होती हूँ। सर्व कर्मेंद्रिय में परमात्म शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित करती हूं।
ओम शांति। आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमें अव्यक्त स्थिति का, फरिश्ता स्थिति का, बीज रूप स्थिति का बहुत सुंदर वर्णन भी किया और अनुभव भी करवाया। हम दीदी का एक हाथ की ताली के द्वारा थैंक्स करेंगे।